आरव और आयु की सगाई में मंथन और आयशा का आमना सामना हुआ, जहां दोनों की बहस हो गई। मंथन रायशा को छोड़कर दूसरी तरफ चला गया, लेकिन तभी रायशा को याद आया कि वो कौन है। गुस्से में रायशा उससे बात करने के लिए उसके पीछे गई। रायशा ने मंथन का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ किया और गुस्से में उंगली दिखाकर कहा, मानती हूँ कि तुम दिल्ली के CM के बेटे हो, तुम्हारी एक पोजिशन और नाम है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी लड़की को इंसल्ट कर सकते हो। इतना भी एटीट्यूड और ईगो में रहना सही नहीं है। हम लोगों ने तुम्हें बनाया है, और तुम्हें किसने राइट दिया ये डिसाइड करने का कि मैं किसी की जगह ले पाऊंगी या नहीं? मुझे किसी की जगह नहीं लेनी है मिस्टर, मैं अपनी जगह खुद बनाऊंगी। एक दिन ये दिन तुम और ये दुनिया वाले दोनों एक साथ देखोगे। गुस्से में रायशा ने अपनी सारी भड़ास निकाल दी और अपनी बात खत्म करके दूसरी तरफ चली गई। मंथन अभी भी वहां पर हैरान खड़ा था। रायशा ने अभी जो कुछ भी बोला वो उसके बारे में सोच रहा था। उसने गहरी सांस लेकर छोड़ी और खुद से कहा, शायद मैंने इसे कुछ ज्यादा ही बोल दिया। एवरी एक्शन हैज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, पर ये तो मुझसे भी ज्यादा बोलकर गई है। मंथन ने रायशा की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे जाने दिया। वहीं सगाई की रस्म खत्म होने के बाद डिनर हुआ और डिनर के बाद सभी अपने घर को निकल गए। आयु अपने रूम में चेंज कर रही थी, तभी उसके पास आरव का वीडियो कॉल आया। उसने जल्दी से टी शर्ट पहनी और कॉल पिक किया। अच्छा, तो तुम्हें मेरी याद आ ही गई, पिछले 3 दिनों से बिजी हो, तब मेरा ख्याल नहीं आया, आयु ने सार्कास्टिक वे में कहा। उसकी बात सुनकर आरव मुस्कुराया और फिर जवाब में कहा, 3 दिनों में एक बार भी तुम्हारा ख्याल दिल से निकला ही कहाँ था, बस तुम्हें महसूस करते हुए ही मैंने तुम्हारे लिए ड्रेसेस बनाई हैं, तुम्हें अच्छी लगी ना? इट वॉज अमेजिंग, आयु ने एक्साइटेड होकर कहा, तुम अपने काम में बेस्ट हो। आज से पहले मैंने ये कॉम्प्लीमेंट बहुत बार सुना है और मैं खुद भी जानता हूँ, बट ट्रस्ट मी, तुम्हारे मुंह से अपनी तारीफ सुनकर जो खुशी हुई वो आज से पहले नहीं हुई, आरव ने खुश होकर जवाब दिया। आरव की बात सुनकर आयु कुछ पल के लिए शांत हो गई और वो गौर से उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे और आंखों पर एक अलग ही चमक थी जो आयु से शादी करने की वजह से थी। कुछ पल रुकने के बाद आयु ने कहा, बहुत खुश हो ना तुम? ऑफ कोर्स, बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुम्हें अभी मेरे बारे में पूरी बातें पता नहीं है, कभी फुर्सत से बताऊंगा। फिलहाल के लिए बस इतना जान लो कि मुझे मेरी सांसें मिल रही हैं। आई प्रॉमिस, तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा, कभी तुम्हें, आरव बोल रहा था, तभी आयु ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, अरे बस भी करो, कुछ कस्में वादे शादी के लिए बचा कर रखो। आयु की बात सुनकर आरव हल्का सा मुस्कुरा दिया, जिससे उसके दोनों गालों पर डिम्पल उभरे। उन्हें देखकर आयु ने कहा, तुम स्माइल करते हो तो बहुत क्यूट लगते हो, और तुम गुस्सा करते हुए, पता है जब तुम गुस्सा करती हो तो तुम्हारी छोटी सी नाक लाल हो जाती है, आरव ने हंसकर जवाब दिया। आरव और आयु देर रात तक ऐसे ही बातें करते रहे और बातें करते हुए ही दोनों को नींद आ चुकी थी, जबकि कॉल अभी भी ऑन था। अगली सुबह छवि सिंघानिया अपने केबिन में थी, उसके पास राहुल भी बैठा था। रात को अयान और रायशा आयु और आरव की सगाई में गए थे, उन्हें इस बात की खबर हो चुकी थी। राहुल ने छवि की तरफ देखकर कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा था मैम, आरव की शादी की खबर बाहर ना फैले उसके इंतजाम उसने काफी अच्छे से किए थे। दी आरव खुराना, जो किसी रेस्टोरेंट तक में जाता था, उसकी भी न्यूज़ बन जाती थी, और अब देखिए शादी जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ बिना किसी लाइमलाइट के कर रहा है। प्यार क्या कुछ नहीं करवा सकता राहुल, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, छवि ने ईविल स्माइल के साथ कहा। छवि की बात सुनकर राहुल कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया, फिर उसने परेशानी दिखाते हुए, आपको क्या लगता है मैम, क्या आरव वीडियो देखने के बाद उस डॉक्टर की बातों को अनसुना कर देगा और अपने प्यार के लिए उसे माफ कर देगा? अगर ये हुआ तो हमारा सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। छवि ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, पहली बात तो ऐसा कभी नहीं होगा, मैं आरव को उससे भी बेहतर तरीके से जानती हूँ, वो धोखा देने वाले को माफ नहीं करता। इस बात का जीता जागता एग्जाम्पल तुम्हारे सामने बैठी हूँ, उसने आज तक मुझे माफ नहीं किया। एंड वन मोर थिंग, अगर हमारा प्लान फ्लॉप हो भी गया तो माहिरा लूथरा किस दिन काम आएगी? आयु किसी भी सूरत में आरव को नहीं मिलेगी, बस मिलेगी तो तड़प और जिंदगी भर की तड़प। छवि की बातों से उसकी नफरत साफ छलक रही थी, साथ ही एक उसकी आंखों में तड़प थी। राहुल ने उसकी बात पर हामी भरी, वो छवि सिंघानिया के साथ काफी टाइम से काम कर रहा था और उसके प्लान्स किस हद तक डेंजरस होते थे वो उनसे अच्छी तरह वाकिफ था। इस बार छवि सब कुछ काफी कॉन्फिडेंटली कर रही थी, तो उसका प्लान फ्लॉप होने का सवाल ही नहीं था। राहुल ने फिर पूछा, अच्छा फिर आप उन्हें वो वीडियो कब भेजने का सोच रही हैं, शादी से पहले या शादी के बाद? ये आरव खुराना के साथ साथ तुम्हारे लिए भी सरप्राइज है, छवि ने आई विंग करके जवाब दिया और फिर उठकर अपने प्राइवेट रूम में चली गई। उसके जाते ही राहुल ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और मन ही मन बड़बड़ाया। बढ़ाकर कहा, ये औरत इतनी खतरनाक है कि कई बार मुझे भी इससे डर लगने लगता है। जब खुद के सगे बेटे तक को बर्बाद करने पर तुली है तो कोई और तो इसके क्या ही लगेगा। उसके बाद राहुल वहां से चला गया। अगली सुबह आरव और आयु की हल्दी की रस्म होनी तय हुई थी। शादी की सारी रस्में ओबेरॉय मेंशन में ही हो रही थी, क्योंकि अगर खुराना मेंशन में कुछ भी होता तो वो न्यूज में आते देर नहीं लगता। सिक्योरिटी के चलते आरव ने ही ये डिसीजन लिया था। हल्दी की रस्म के लिए मेंशन के हॉल को फूलों से डेकोरेट किया गया था। आरव ने पेस्टल येलो कलर का डिजाइनर कुर्ता पहना था। बाकी सब भी येलो थीम के साथ ही वाइब कर रहे थे। इस फंक्शन में बस ओबेरॉय और खुराना फैमिली के लोग ही शामिल थे। रात की तरह आयु को आने में टाइम लग रहा था। आरव ने उसके रूम की तरफ देखकर कहा, शादी के बाद सबसे पहले इसे टाइम पर रेडी होना सिखाऊंगा, कितना टाइम लगाती है ये। आरव सोच ही रहा था तभी आयु अपने रूम से बाहर निकली। उसने येलो कलर का लहंगा पहना था जिस पर स्लीवलेस डिजाइनर ब्लाउज था। आयु ने कोई भी ज्वेलरी नहीं पहनी थी, बस बालों में फ्लावर टियारा लगा रखा था। लाइट मेकअप के साथ वो काफी खूबसूरत लग रही थी। आयु आरव के पास आकर बैठ गई। पहले गौरवी जी ने आरव को हल्दी लगाई और फिर आयु को। उन्होंने आयु को आशीर्वाद देते हुए कहा, बस हमेशा मेरे आरव के प्यार के रंग में रंग कर रहना, वो तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने देगा। ये तो पहले ही आपके आरव के प्यार के रंग में रंग चुकी है आंटी, तारा ने सरकास्टिक वे में कहा। उनकी बात आरव को पसंद नहीं आई। वो तिरछी निगाहों से पारा जी को देख रहा था। आरव उनकी बात का कोई जवाब देता उससे पहले आयु ने धीरे से उसकी थाई पर हाथ रखा। आयु के ऐसा करते ही आरव ने उसकी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, मैं बार बार इनकी बातों को इग्नोर नहीं करूंगा, ना ही उस शख्स को जो तुम्हें हर्ट करता है। आरव की आंखें सर्द थी और बोलने का लहजा सख्त। आयु ने जवाब में कहा, बस कुछ दिनों की बात है। आयु आगे बोलते उससे पहले बीच में आरव बोल पड़ा, हाँ कुछ ही दिनों की बात है, क्योंकि शादी के बाद मैं तुम्हें यहाँ नहीं आने दूंगा। तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे गुस्सा क्यों है, तुमने अभी तक इसका रीजन नहीं बताया। जय जी और तारा जी की आयु के साथ कुछ खास बनती नहीं थी, लेकिन वो उसे प्यार से ट्रीट करते थे। जब से उन्होंने आरव और आयु को साथ में रेस्टोरेंट में देखा था वो आयु से नाराज थे। ऊपर से वो वीडियो देखने के बाद वो और भी गुस्सा हो गए। आयु ये बात आरव को नहीं बता सकती थी।
आरव का ध्यान हटाने के लिए आयु ने अपने गाल से थोड़ी सी हल्दी हटाई और आरव की नाक पर लगाते हुए कहा, मैं ही क्यों तुम्हारी उतरी हुई हल्दी लगाऊं? तुम मेरे प्यार में नहीं रंगना चाहोगे क्या मिस्टर आरव खुराना? इसके लिए मुझे इस हल्दी की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वैसे बात पर से ध्यान हटाने का ये तरीका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, आरव ने सिर हिलाकर कहा और फिर सामने की तरफ देखने लगा। अब क्या तुम मुझसे भी नाराज रहोगे? आयु ने बच्चों जैसी आवाज निकाल कर कहा। अगर तुम ऐसी हरकतें करोगी तो ऑफकोर्स रहूंगा, आरव ने आयु की तरफ बिना देखे जवाब दिया। आयु को आगे कुछ कहने का मौका नहीं मिला क्योंकि घर के बाकी लोगों से हल्दी लगाने के लिए आ गए थे। हल्दी की रस्म पूरी होने के बाद आरव अपने घर वापस आ चुका था। साक्षी अपने रेगुलर चेकअप के लिए लाइफ केयर हॉस्पिटल गई थी। एक्सीडेंट के बाद से ही उसे हर मंथ चेकअप के लिए जाना होता था। वो अयान के साथ उसके केबिन में बैठी थी। रिपोर्ट पढ़ते हुए अयान ने कहा, अब आपको आगे के चेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी साक्षी, आपकी रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर है। ये तो खुश होने वाली बात है, फिर तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? साक्षी ने हैरानी से पूछा। उसकी बात का जवाब देने से पहले अयान ने खोए हुए अंदाज में साक्षी की तरफ देखा। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, सब ठीक है तो आप हॉस्पिटल भी नहीं आएंगी, शायद अब हमारा मिलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। पिछले कुछ दिनों में साक्षी के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद अयान को वो अच्छी लगने लगी थी। हालांकि सर्जरी के बाद जब साक्षी हॉस्पिटल में रही थी तब से ही अयान उसे लाइक करने लगा था, पर वक्त के साथ ये कनेक्शन और स्ट्रांग हो गया था। तुम लोगों के लिए मुश्किल होता होगा ना, एक पेशेंट के साथ इतना टाइम स्पेंड करते हो, फिर उनके साथ अफेक्शन हो जाता है और अचानक वो हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। इट्स टू डिफिकल्ट, साक्षी ने उतरे हुए चेहरे के साथ कहा। वो इसे नॉर्मल समझ रही थी। अयान ने बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। फिर साक्षी ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं, हम दोनों कभी टाइम निकालकर मिल लेंगे। तुम्हें जब भी मेरी याद आए तो मुझे कॉल कर लेना, हम कुछ दिनों के लिए मुंबई में ही हैं तो मैं तुमसे मिलने आ सकती हूँ। थैंक यू सो मच, अयान ने जवाब में कहा। रिपोर्ट्स लेने बाद साक्षी वहां से जा चुकी थी जबकि अयान अभी भी बैठा उसके बारे में सोच रहा था। गॉड नोज मुझ में हिम्मत कब आएगी जब मैं आपसे अपने दिल की बात कह पाऊंगा साक्षी। हमारे बीच काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं और सबसे बड़ा डिफरेंस एज गैप का होने वाला है। आई होप आप इस टॉपिक को ज़्यादा सीरियस ना लें क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उम्र में मुझसे बड़ी हैं, आप भाई की फ्रेंड हैं तो अब वही इस मैटर में मेरी हेल्प कर सकते हैं। आपके दिल्ली जाने से पहले मैं आपको अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ, बस आप मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लें, अयान ने खुद से कहा। वहीं उसके केबिन से बाहर निकलते ही साक्षी के चेहरे के भाव बिल्कुल सख्त थे और आँखें हल्की नम। उसके दिमाग में अभी काफ़ी कुछ चल रहा था जो अयान से जुड़ा था।